इत्यादि की जो थ्योरियां हैं ये संपूर्ण रूप से भ्रांत और गलत हैं। पहले न जाने कीड़े मकोड़े थे, फिर बंदर हुए, बंदर से वनमानुष, वनमानुष से मनुष्य, अब क्यों नहीं हो जाता दूसरा कुछ। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य है, और इसलिए है कि हम इस पर विचार करें। जो एक्सपर्ट इस विषय में है उनसे विचार करके इस चीज को हम रियलाइज करें कि हम हाड़ चाम मांस के पुतले नहीं है। इसके अंदर में हम आत्मा है, चेतन है, अजर है, अमर है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राश, सुख का भंडार है ये। गीता में भी कहा ममई वंशो जीव लोके जीव भूत। तो जब तक जीव ये नहीं समझेगा जिसके अंदर में मैं आत्मा हूं, परमात्मा से हमारा मिलन होगा, और मिलन होना चाहिए, तब तक उसे सुख और शांति नहीं होगी। वही जो प्रभु हैं मैंने बतलाया। इसलिए हमारा ये जन्म हुआ इस चीज को रियलाइज करने के लिए, इसकी अनुभूति करने के लिए। किंतु आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कपास ओटने लगे, गया वो देश। आज देख रहे हैं शांति के नाम पर कैसी अशांति हो रही है। एक आदमी शांति के लिए दूसरे पर आक्रमण कर रहा है, असल में शांति के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, प्रेम के लिए नहीं। प्रेम में लेना नहीं होता है, देना होता है सर्वस्व। इसलिए पहले इस चीज को समझा जाए, यदि भगवान से प्रेम होगा प्राणी मात्र से प्रीति होगी। उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना सर्वस्व देगा। इसलिए हमारी संस्कृति में ये सब चीजें नहीं है। इसलिए उद्धव संवाद जानने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। उद्धव संदेश प्रेम का संदेश, आनंदम अहम ब्रह्मा, ब्रह्मानंद में रसो वैसह, वह रसपूर्ण है, रस ही है, रस का स्वादन करने वाला भी वही है। वही प्रेम इस धराधाम पर उतरता है कृष्ण के रूप में। कृष्ण ही प्रेम है, उतरते हैं किस लिए? ये सब जो जीव हैं ये मेरे पार्ट पार्सल है, हमारे अंश हैं। हमें भूल करके जन्म जन्मांतरों से, करोड़ों जन्मों से, नाना प्रकार की योनियों में त्रिताप का भोग कर रहे हैं। कभी सुकर गधे होते हैं, कभी देवता देवी होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, किंतु आज तक कोड़ी जन्मों में उनको सुख शांति नहीं मिली। इसलिए उनको प्रेम में उनका जीवन बनाने के लिए स्वयं प्रेम ही कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए हमारा धर्म प्रेम है। उद्धव संदेश में इसी प्रेम का दिग्दर्शन कराया गया है। वही प्रेम दो भागों में विभक्त होता है। कृष्ण स्वयं रसमय वस्तु, अखिल रसामृत सिंधु हैं, रस के समुद्र हैं, फिर भी उनका एक अंश है जिसको ह्लादिनी शक्ति कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं, अंतरंगा शक्ति कहते हैं। कृष्ण की इच्छा से वो भी मूर्तिमान रूप होकर के धारण करके कृष्ण के साथ में प्रकट हुई, उनका नाम है राधा। और उनकी काय व्यूह, उनसे प्रकट होने वाली जितनियां गोपियां हैं वो कृष्ण ही हैं, कला हैं, उनकी कलाओं में से एक एक कलाएं हैं। वो सब उतर करके ऐसी लीला करते हैं जिसको सुन करके, समझ करके, वर्णन करके लोगों का कल्याण हो सका, प्रेम हो सके, और प्रेम तत्व किसको कहते हैं इसको समझ सके, नहीं तो जीवन सुखी और शांति नहीं हो सकता। हमारे देश में हिरण्यकश्यपु एक हो गए हैं, न रात में मरेंगे न दिन में मरेंगे, आकाश में नहीं मरेंगे, किसी महीने में नहीं मरेंगे, न अस्त्र शस्त्र से मरेंगे, न भूमि में न आकाश में, किसी महीने में भी नहीं मरेंगे। और ये बर पा करके त्रिभुवन को कंपित करने लगा असुर सम्राट। हुआ क्या, वो सारे विश्व को अपने प्रभुत्व में रखना चाहता। आज यही दशा है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता उस देश का, उसके प्रेसिडेंट का, किंतु बात यही है, इसमें सुख और शांति का तो लेश मात्र भी नहीं है, स्वार्थ जघन्य भरा पड़ा है। तो वो प्रेम कृष्ण और गोपियों के रूप में आया। कृष्ण गोकुल में जन्म लिए, मथुरा में भी जन्म लिए, विशेष करके मथुरा में उनके जन्म का इतिहास। गोकुल में खेले बड़े हुए, रास तक वहां पर किया। रास माने रस, कोई गंदी चीज नहीं, आनंदोत्सव। और इसके बाद में अत्याचारी असुर कंस को उन्होंने मारा, और तत्पश्चात फिर अपना एक दूत भेजा उद्धव को, जाओ हमारे माता पिता और हमारी प्राण से प्रिय जो गोपियां हैं उनको सांत्वना दो। किंतु सांत्वना का देने के लिए नहीं भेजा, विशेष कारण था ये। वो कारण ये था, गोपियां तो लाखों हैं, वे एक दूसरों से दुख बांट करके कुछ सांत्वना उनको मिल जाता है, किंतु कृष्ण के लिए गोपियों के विरह में, माता पिता के विरह में, विशेष करके गोपियों और राधा जी के विरह में ऐसे उत्कंठित है कि उनसे बातचीत करके किसी को अपना दुख बांट दे ये संभव नहीं। किंतु आप लोग थोड़ा सा गलत मत करिएगा, विप्रलंभ क्या है और संभोग क्या है बड़ी कठिन चीज। प्रेम ही के दो पहलू हैं। यदि प्रेम में सब समय निरंतर मिलन रहे तो वो एक तरफा हो जाता है, उसमें कोई लहरियां नहीं है। प्रेम जैसे समुद्र में लहरियां होती हैं, ऐसे प्रेम में लहरियां होती हैं, अनुभव इत्यादि लहरियां हैं। यदि सेपरेशन कुछ होगा तब तब जब मिलन होगा तो आनंद प्रगाढ़ होगा। इसलिए प्रेम को दो भागों में बांटा, मिलन और विरह। गोपियां तो कृष्ण उद्धव जी को भेजा, इसलिए हमारे दुखों को बांटने वाला कौन है जिसे अपना दुख कह करके बांट लूं। इसलिए अच्छा हो उद्धव जी को मैं भेजूं ब्रज में, और उस स्कूल में भेजूं जहां पर, उस विद्यालय में भेजूं जहां पर मैंने प्रेम का पाठ सीखा है। प्रेम की बहुत सी बातें हैं जो कृष्ण जो स्वयं भगवान है, सर्वअंतर्यामी सर्वशक्तिमान रस के समुद्र है, उनको भी पता नहीं है, क्योंकि वो विषय है प्रेम के, प्रेम के विषय हैं आश्रय गोपियां और राधा जी हैं। इसलिए प्रेम कैसा होता है, उनकी नजरों में कृष्ण कैसे नए नए रूप में दिखते हैं, उनके लिए विरह कैसा होता है, उनके लिए आनंद कैसा होता है, ये गोपियों में है। दे आर मेंटेनर ऑफ ओशन ऑफ रस, रस के समुद्र हैं गोपियां। इसलिए उनमें ऐसे कुछ भाव हैं जो कृष्ण तक को भी अनुभूति नहीं है, इसलिए वो भेजते हैं। अच्छा जाओ तो जरा पढ़ाओ, तो वहां जाते हैं, वहां के प्रिंसिपल कौन है उस प्रेम पाठशाला प्रेम विद्यालय के, राधिका जी, प्रेम की मूर्त विग्रह। और उनके प्रेम की और दो जो चीजें हैं वो विशाखा ललिता इत्यादि, एक एक डिपार्टमेंट के हेड है, वहां बहुत तरह के सब्जेक्ट है, प्रेम के बहुत पहलू हैं, एक ही नहीं। तो तो उनको समझने के लिए भेजते हैं। उद्धव जी गए और उद्धव जी ने जाकर के जो देखा तन्मय हो गए। एडमिशन नहीं मिला, केवल दूर से विद्यालय को देखे। गोपी ने थोड़ी सी परीक्षा ली, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। उत्तीर्ण होने के बाद में विद्यालय को देख करके और सबको प्रणाम करके लौट आए कृष्ण के पास में। प्रेम की अनुभूति नहीं होती हुई, क्यों? गोपियों ने पूछा, उद्धव तुम आए हो, कृष्ण के यहां से आए हो, वो बड़े रसिक हैं, बड़े प्रेमी हैं, तो वहां से जब आए हो यहां तो अच्छा ये बतला सकते हो कि प्रेम क्या होता है? ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो, ये प्रेम क्या चीज है? हमने सुना है एक प्रेम होता है स्वार्थ में और एक प्रेम होता है निस्वार्थ, प्रकृति से अतीत होता है, अप्राकृत प्रेम होता है, और एक होता है स्वार्थ। कैसे? एक उदाहरण से समझो। एक भिक्षुक है, भिक्षा करने के लिए गया, भिक्षा मांग ले लिया और फिर वहां नहीं रहेगा, चला जाएगा। भ्रमर है, फूलों में रस है, मधु है, इसलिए उस पर जाता है, बैठता है, मधु ले लिया फिर अब नहीं जाएगा वहां, दूसरे पर जाएगा। एक वेश्या है, धन ही उसका मूल उद्देश्य है, धनी नवजुवकों को प्रेम में फंसा करके जब उसका सब पैसा हरण कर लेगी फिर उसके तरफ में प्रेम नहीं होगा, उसे पूछेगी नहीं, उसे मार करके भगा देगी। पुरुष भी ऐसा ही, लोगों से स्त्रियों से प्यार करता है किंतु अपना काम हो जाने पर उसे कोई भी मतलब नहीं। मृग ये वनों में रहते हैं, वन में आग लग जाएगी वहां नहीं रहेगा, जब तक फल फूल छाया है तब तक रहेगा। ये सब स्वार्थ प्रेम है। देखो उद्धव, हमारा उनका प्रेम जो था वो बड़ा ही विचित्र था, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई भी स्वार्थ उनके प्रेम में नहीं। हम लोग उस स्वार्थ के लिए उनसे प्रेम नहीं किया, वो स्वभाव की प्रेम था, और उनका भी हमारे प्रति किसी काम के लिए उद्देश्य के लिए नहीं था। तो जिसका कोई प्रेम का कारण होता है वो कारण ध्वंस हो जाने पर प्रेम समाप्त हो जाता है, और जिस प्रेम का कोई कारण ही नहीं है, कोई हेतु नहीं है, वो नष्ट नहीं होता। उद्धव तुम बतला सकते हो कि हमारा उनका प्रेम कैसे नष्ट हो गया? उद्धव जी सुर्ख खुजलाने लगे, उत्तर नहीं दे सके, बस देखते रह गए। यह है प्रेम, ये क्या चीज है? इसमें उद्धव जी का हम थोड़ा सा बतलाते हैं। उद्धव जी गए, पहले गोपियों से नहीं मिले, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा जी ने देखा ये कृष्ण का एक मित्र आया है, मित्र ही नहीं बृहस्पति के ये शिष्य हैं, कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के जनरल हैं, कृष्ण के सभी कुछ हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, आए हैं। नंद बाबा जी ने उनको किसी प्रकार से कुछ भोजन कराया, क्या वो जिसको हम लोग पायस या खीर कहते हैं, कैसा? उनके घर में कुछ नहीं था, किसके लिए रसोई बनती? जिस दिन से कृष्ण मथुरा चले गए हैं फिर रसोई नहीं बनी, बर्तन मजे हुए नहीं। यशोदा मैया कृष्ण के विरह में रोती रोती पागल और अंधी हो चुकी है, खाना पीना सब बंद है, चूल्हे बिना लिपे पूते हुए बर्तन ऐसे पड़े हैं, चूल्हों में मकरणों ने जाल बुन दिया, सभी लोग बड़े अधीर हो रहे हैं, गायें दूध नहीं देती, बछड़े अब दूध नहीं पीते, कोयल कुहकते नहीं वृंदावन में, मोर नित्य नहीं करते, ऐसी वहां की स्थिति हो गई। उद्धव जी देख रहे हैं, नंद बाबा उनको ले गए, खिलाया पिलाया, थोड़ा सा विश्राम करने के बाद में बोले, बोलना चाहते हैं क्या, मेरा बेटा कैसा है, कृष्ण कन्हैया हमारा लाला कैसा है। किंतु जब कृष्ण की स्मृति होती है तभी गला गदगद हो जाता है, आंसुओं की धार बहने लगती है। फिर उनके हमें तो कुछ नहीं होता, किंतु हठात किसी की अपनी स्त्री चली जाए, बेटा चला जाए, तो देखो ये क्या होता है। कृष्ण के लिए विरह अनुभूति नहीं होती है, यह अनुभूति कराने ही शास्त्रों का विचार है। गुरु वैष्णव लोग भगवान इसी के लिए आते हैं, कृष्ण से अपना विरह देखो, कृष्ण के लिए छटपटाओ, कृष्ण के लिए रो, यही जीव का मूल विचार है। उद्धव जी देखा नंद बाबा रो रहे हैं, पूछ नहीं पाते, जब पूछ नहीं पाए तो अंत में ये पूछा, उद्धव हमारा भाई वसुदेव जी कैसा है। वो बड़े खुशी की बात है कि 12 वर्ष तक कंस ने उनको जेल में बंद कर, देवकी और वसुदेव को जेल में बंद करके, और उनको तरह तरह से यातनाएं दी, और उसका कर्म फल ऐसा है कि वो मारा गया, कृष्ण ने नहीं मारा, उसके कर्मों ने मारा। हम लोग भी अपने कर्मों का फल भोग करते हैं, यदि हम लोग भी ऐसा करेंगे तो अपने कर्मों का फल ऐसा ही भोग करना पड़ेगा, इसलिए मारा गया, अच्छा हुआ। देखो मैं कृष्ण को भूलने के लिए हम चेष्टा करते हैं, वनों में जाते हैं, किंतु वन में जहां जाते ऐसा कोई वृक्ष नहीं जहां पर उसने लीलाएं नहीं की, बच्चों के साथ में खेला नहीं, यमुना के तट पर जाता है उसको भूलने के लिए, तो उसके देखते हैं कि यहीं पर बच्चों के साथ में स्नान और खेल करता था। गोवर्धन में जाता हूं, सर्वत्र ही उसके पैर नजर आते हैं, उसकी खेले आती है, उसके कुंज कहते हैं इसमें खेलता था, मैं बेचैन हो जाता हूं, ये कर कर होने लगे। उद्धव जी ने देखा जी, ओहो कृष्ण ने मुझे इनको सांत्वना देने के लिए, क्या सांत्वना दूं, यदि इस जीवन में मनुष्य जन्म में किसी को कृष्ण के लिए थोड़ी सी भी विरह हो और रोए, उनकी कथाओं को कहते हुए रोए, सुनते हुए रोए, उसका जीवन सुखमय शांतिमय और महासौभाग्यवान। नंद बाबा जैसा आज कोई विश्व ब्रह्मांड में हम देखते हैं, माता पिता तो बहुत हैं, किंतु नंद बाबा जैसा, यशोदा मैया जैसा किसी का सौभाग्य नहीं है। क्यों, कृष्ण के लिए विरह कर रहे हैं, जो सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड का अधिनायक है, विश्व का स्रष्टाओं का स्रष्टा है, और उसके लिए रो रहे हैं। तो मैं कैसे कहूं जी नंद बाबा मत रोइए, सभी हमारा मुख बंद कर, और यदि मैं कहूं नंद बाबा खूब रोइए तो सांत्वना तो होगी नहीं, फिर क्या होगा। मैं कहूं, आखिर कहूं तो क्या, अंत में कहा जो कुछ मैं यही कहूंगा, विश्व में यदि किसी का जन्म सार्थक है और सौभाग्यवान है, नंद यशोदा को, जो विश्व ब्रह्मांड के सृष्टाओं के प्रभु को भी अपना बेटा मान करके और उसके लिए रो रहे, ऐसा सोच करके बोले जी, बाबा आनंद आप और यशोदा जी परम सौभाग्यवान और सौभाग्यवती हैं। देखो जिसको तुम पुत्र समझ रहे हो वो पुत्र नहीं, वो तो विश्व ब्रह्मांड का सृष्टाओं का भी ईश्वर है। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। वो किसी का माता पिता नहीं है, कुछ नहीं। नंद बाबा बोले, मैं समझता हूं कि तुम्हारा अकल है कुछ, कृष्ण के साथ रहे। मैं देखता हूं कि तुम्हारे अकल के दांत भी नहीं गिरे, तनिक भी बुद्धि नहीं हुई। जो संसार में सबसे बड़ा दुर्भागा है, आज उसको तुम सौभाग्यवान कर रहे हो। तनिक भी ज्ञान रहने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, कैसे कहा जो सौभाग्यवान हो। देखो, हमारा एक बेटा ऐसा रूपवान, गुणवान, लवली, जो संसार में किसी को ऐसा पुत्र नहीं होता। यहां तक कि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि ये तो नारायण के सम गुणों में है, और तुम करे कि वो साक्षात भगवान है, तो मैं भगवान को बेटे के रूप में पा करके भी उनको रख नहीं सका, और उसके बिना आज भी जीवित हूं। पिता एक था, वो कौन? महाराज दशरथ। राम के जाने के बाद में हा राम, तीन बार कहा, तीसरा बार हा राम नहीं कह सका, बस पीछे में प्राण पखेरु हो गए, मर गया। मैं मर के उन्हें रहा उसके विरह में। उद्धव जी नतमस्तक हो गए। ये तो नंद बाबा जसोदा मैया के साथ, नंद जसोदा जी तो कुछ बोल नहीं सकी, और फिर गोपियों के साथ जो वार्तालाप हुई उसकी तो बात ही क्या। कितना समय हुआ? हमको डॉक्टर ने कुछ मना भी किया है, अब कल वहां पर इसके बाद में हम कहेंगे। तब आप लोगों को विशेष धन्यवाद है जो इसके संबंध में आप लोगों ने पूछा और कहने के लिए हमको समय दिया।
एक प्रश्न पूछना चाहते हैं।
हाँ, पूछे।
हाँ जी, आपसे निवेदन है, कोई संशय दूर करना हो तो, जिज्ञासा हो तो कुछ पूछ लीजिए किसी को भी। एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? सब इतने प्रभावित हो गए हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है। विश्व पूरा अशांति में है, कहीं कहीं मां सत्ताएं आपस आपस में लड़ रही है, उसके शांति के लिए क्या आपका मैसेज है?
विश्व इसमें पूरा अशांत है, सब आपस में लड़ रहे हैं, इसके शांति का उपाय क्या है?
हमारे शास्त्रकारों ने, विशेष करके कृष्ण ने, रामचंद्र जी ने, जो हमारी संस्कृति के एक आदर्श हैं, लोगों ने बितलाया है, विशेष करके गीता ने। गीता में नहीं, इसलिए बतलाया है बतलाया, थोड़ा सा मैं विस्तृत रूप में बतला रहा। विहाय कामान सर्वान पुमान शर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स्वशांति मत गच्छति। संसार के की कामनाओं को जिन्होंने संपूर्ण रूप से छोड़ दिया है, जिन पुरुषों ने, पुमाम जिन पुरुषों ने, जिन जीवों ने संसार की जितनी भी कामनाएं हैं, सांसारिक परमार्थिक नहीं, छोड़ दिया है, और निष्प्रिय संसार के सुखों से भी निष्प्रिय है, जो कुछ सुख और दुख आता है उसको सह लेता है, निर्ममो संसार के विषय से कुछ निर्मम हो गया है, निरहंकार मैं हूं पोजीशन वाला, धनवान हूं, विद्वान हूं, पहलवान हूं, राजनीतिज्ञ हूं, छोड़ दिया है, वो शांतिम अधिगच्छति, उसको शांति है, दूसरे को नहीं, न अन्य शाम। कहते हैं त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्तसि सर्व। मूल चीज ये है, विश्व ब्रह्मांड का रचयिता वो है, एक ही ये ब्रह्मांड नहीं, कोटि कोटि जो आकाश में तारे चमक रहे हैं, एक एक ब्रह्मांड है, उसमें कितने सूर्य और कितने चंद्र हैं, सबका बनाने वाला एक ही है, हम उसका अंश हैं। तो यदि उसके हम शरण में जाएंगे तो क्या होगा? गच्छ, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, तम उसके ही, किसके? जो प्रभु संसार का है, सर्वभाव सब प्रकार से उसके शरणागत हो, सर्वधर्मान परित्यज्य, लौकिक जितने प्रकार के धर्म हैं सब धर्मों का परित्याग करके, हे भारत, हे अर्जुन, उसके शरण में जाओ, तत्प्रसादात, उन्हीं की कृपा से ही तुमको पराशांति, पराशांति प्रेम स्थानम, उनका परलोक है, और गति, गति माने शांति सुख आनंद, ये सब कुछ प्राप्त हो सकती है, और कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि वही सबका मूल है, बड़ा दयालु है, इसीलिए वो अवतरण किया, अपनी लीलाएं करता है, इसलिए बिना उसकी कृपा के एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है, तो शांति कहां से आएगी? इसलिए समझो वो प्रभु को, और उनसे प्रार्थना करो, और कलिजुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर, गति माने क्या? सुख शांति आनंद प्रेम, और इस जगत से मुक्त होकर के चला जाना, ये सब कुछ कहां से मिलेगा? उनकी कृपा से मिलेगा, बिना कृपा के संत भी नहीं मिलते, बिना कृपा के भक्ति भी नहीं मिलती, तब हाँ हमारा भी कुछ करणीय है। ऐसे संत महापुरुष जो इसमें पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके साथ में जाने से, बिन सत्संग न पावहि प्राण, इसलिए सत्संग महान है, जो कि स्वयं विषयों में डूबा हुआ है, स्वार्थ में डूबा हुआ है, ये मेरे समझ से एंग्ल और ये मार्किन, ये जोट जो इराक पर चढ़ाई कर रहा है, किस लिए, किस लिए चढ़ाई? मूल तात्पर्य आप लोग सभी जानते हैं, हमको अधिक नहीं जाना है, क्या इससे शांति हो जाएगी? क्या शांति के लिए लड़ रहे हैं, न कि स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं? इसलिए ये दोनों ही वैसे ही हैं, एक जरा कम है, एक दूसरा अधिक है, शांति के लिए कोई भी नहीं लड़ रहे हैं, अपना स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि हम देखते हैं कौरवों पांडवों में जो युद्ध हुआ था, अर्जुन और इनका पक्ष जिसमें कृष्ण थे, वो शांति के लिए लड़ाई किया, और दुर्योधन इत्यादि ने, कौरवों ने अशांति के लिए, स्वार्थ के लिए युद्ध किया, अंत में धर्म की विजय हुई, कृष्ण इसी के लिए आए थे, संस्थापनाय धर्म संस्थापनाय परित्राणाय साधु, जो शांति प्रिय व्यक्ति हैं उनको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, शांत रहने के लिए, और असुरों का दलन करने के लिए, जो शांति के विरुद्ध हैं, इनमें ये दोनों क्या ये चाहते हैं? जो जगत में शांति हो, इसलिए हो, जगत में परस्पर प्रीति हो। एक बात समझिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को भाग में कौन भागा, बांटा? पृथ्वी तो एक है, एक ही सूर्य चंद्र है, हवा भी एक ही देने वाला है, सूर्य की प्रकाश भी, सूर्य का प्रकाश भी एक ही जगह से आ रहा है, पृथ्वी को बांटा कौन? भगवान ने बांट दिया, ये अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पोलैंड है, ये इराक है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, हमारे इसी में, मेरी उम्र करके 83 होने जा रही, 83 वर्ष में मैंने देखा, पहले भारत कितना, बर्मा, लंका, और उधर में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, और पाकिस्तान को देख रहे हैं, भारत इसके पहले इंडोनेशिया, और सब कश्मीर से तक सारा जम्बू द्वीप भारत वर्ष था, धीरे धीरे कटता गया। भारत एक देश नहीं, संस्कृति है, यदि संस्कृति नहीं रही तो देश क्या है? जिस देश में शांति है, जिसका उद्देश्य शांति है, मां तमसा ज्योतिर्गम है, अंधकार की तरफ में मत जाओ, भोग विलास और ये जो लड़ाई इत्यादि है ये सब अंधकार है। मां तमसा ज्योतिर्गम, ज्योति क्या है? आत्मज्ञान, जिसमें शांति और सुख रह सके। इसलिए उन्हीं की कृपा से ही होगा, उनके लिए प्रार्थना करो। यदि सवेरे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, मैं तुम्हारा हूं, उनका नाम लो, चाहे राम लो, कृष्ण लो, और कलयुग का सबसे बड़ा महान मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। सब नहीं है इसमें, सारी शक्ति उन्होंने भर दी है, जो कुछ राम कृष्ण कर सकते हैं ये नाम भी वही कर देगा। और एक कहते हैं कैसे शांति आएगी, जगत संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से नहीं होगा। क्या कर रहा, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं, एक जगह कहीं शांति लाया, इनकी बात कोई मानता है? संयुक्त राष्ट्र में इतने देशों को उन्हें क्या कर रहे, शांति स्थापन कराने को होता तो क्यों नहीं, रुपए से बिके हुए हैं। भारतवर्ष का वही देखते हैं, पहले का आदर्श नहीं देखता, सोचते हैं कि जो अमेरिका यदि बिगड़ गया, हम यदि स्पष्ट कहें सत्य बात कहें, इसलिए सभी डरते हैं प्रभुत्व से, और वो प्रभुत्व सबका करना चाहता है, इसलिए इससे शांति नहीं होगी। दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुखेशु अनुद्विग्न, दुख में जो उद्विग्न नहीं होते, दुखी नहीं होते, और सुखेशु विगत रूपया, सुख की स्प्रिया नहीं, सुख और दुख हमारे कर्म से जो आ गया उसको सहिष्णुता के साथ में भोगो, अपना उद्देश्य ठीक रखो, सुख और शांति प्रेम की प्राप्ति, प्रेम माने कृष्ण समझो, उनकी सेवा समझो। और वीतराग भय क्रोध, वीतराग अशक्ति संसार की चीजों से दूर हो, अशक्ति हो भगवान के चरणों में, और राग माने होता है अशक्ति, भय हम लोगों को भय है सबसे, इस समय यदि डरपोक और भय युक्त है संसार में कोई राष्ट्र तो वो है, इससे बड़ा कोई भय वाला नहीं, इसे जहां देखता है बस भय ही भय देखता है, और कोई राष्ट्र इतना भय नहीं रखता है, किंतु इन लोगों में सबसे अधिक भय, इसलिए सबको दबा करके और निर्भय होना चाहते हैं, ये इससे नहीं होगा। भय क्रोध, यदि दमन करना है आक्रमण करके उसे तो क्रोध को, किंतु क्रोध कैसा होता है, भोग की वासना से, यदि काम में वासना न हो तो क्रोध भी नहीं होगा, क्रोध नहीं अपने आप शांति आई, जगत में सब शांति। साधारण सा एक देखिए उदाहरण हमारे भारतवर्ष में, और की तो बात बहुत दूर की है, हमारे गांधी जी भी किस चीज का सहारा लिया, अहिंसा का लिया ना, हमारे देश से ही ये शब्द निकला अहिंसा परमो धर्म, ये चीन का, जापान का, इंडोनेशिया का, थाईलैंड का, ये चीज ने, ये संदेश हमारे देश से ही उठा, शास्त्रों से ही उठा, तो अहिंसा परमो धर्म, किंतु वही लोग अहिंसा नहीं मानते हैं, कहते हैं मांस खरीद लो मांस काटो मत, अरे उसी के लिए तब फिर मांस काटो, तो अहिंसा कहाँ हुआ, अहिंसा ये चीजें नहीं है। तो वीतराग भय क्रोध, जिसने क्रोध को जीत लिया, दमन कर लिया, अपनी आकांक्षाओं को दमन कर लिया, जितेंद्री हो गया, वो स्थित धी मुनि रुच्यते, उसकी बुद्धि स्थिर है, वो मुनि है, वही भगवान को और प्रेम को पा सकता है, दूसरा कोई जगत में उपाय नहीं।
रमेश खंडेलवाल जी से निवेदन करूंगा, वोट ऑफ थैंक्स,
वोट ऑफ थैंक्स देने के पहले मैं अपने डॉक्टर जवाहर मेहता साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराज जी को स्वागत करें।
हमारा सौभाग्य
मैं एक थोड़ी सी